आगे सबक देखिए भाई। वईदा अरादल इमामुल औद व माहू मवाशिन फलम यकदिर अला नकलिहा इला दारिल इस्लामी दबहा व हर्रकहा वला याकिरुहा वला यतरुकुहा वकाल शाफिय रहिमहुल्लाह तआला यतरुकुहा لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة। गुज़श्ता सबक के अंदर साहिब हिदाया ने आपको यह बतलाया था कि मुसलमानों में से कौन अमान दे सकता है और कौन अमान नहीं दे सकता। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि कोई भी आजाद मुसलमान मर्द हो या औरत, वो कुफार के पूरे शहर को भी अमान दे सकते हैं, और जब मुसलमानों में से कोई एक जो है कुफार को अमान दे दे तो बाकी मुसलमानों के लिए उनसे लड़ाई जायज नहीं है। और साहिब हिदाया ने बतलाया था कि इसके अंदर असल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि आपने फरमाया अल मुस्लिमून ततकाफ़ दिमाउहुम व यसअ बिज़िम्मतिहिम अदनाहुम, कि मुसलमान जो हैं अपने खून के एतबार से बराबर हैं, यानी किसास और दियत के एतबार से तमाम मुसलमान बराबर हैं। और नीज हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वयसअ बिदिम्मतिहिम अदनाहुम, और मुसलमानों के अमान में सई कर सकता है, कोशिश कर सकता है, अदनाहुम ऐ अकल्लोहुम, यानी जो उनमें कम से कम है, यानी एक फर्द, वो भी कोशिश कर सकता है। और नीज साहिब हिदाया ने बतलाया कि हर मुसलमान जो है वो लड़ाई का अहल है, उसमें लड़ाई की सलाहियत है, तो लिहाजा वो लश्कर वालों में से है, और लश्कर वालों से तो कुफार खौफ खाते हैं, तो लिहाजा मुसलमान का अमान देना सही है, इसलिए क्योंकि अमान जो है उसको दिया जाता है जिसे खौफ होता है, और हर मुसलमान मर्द और औरत से कुफार खौफ खाते हैं क्योंकि हर मुसलमान मर्द और औरत वो लश्कर वालों में से है। तो लिहाजा जब मुसलमान इनको अमान देगा तो अमान ने अपने महल यानी महल्ले खौफ से मुलाकात कर ली, लिहाजा मुसलमान का इनको अमान देना सही है। और नीस इसलिए भी अमान का जो सबब है वो ईमान है, और ईमान के अंदर तकसीम नहीं हो सकती। कोई शख्स या तो मोमिन होगा या मोमिन नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते कि कोई शख्स कुछ मोमिन है और कुछ मोमिन नहीं है। तो लिहाजा ये जो अमान है इसका सबब ईमान है, और ईमान में तकसीम नहीं तो अमान में भी तकसीम नहीं है। लिहाजा जब एक मुसलमान ने अमान दे दी तो तमाम मुसलमानों की तरफ से अमान हो गया, ये नहीं हो सकता कि कुछ मुसलमानों की तरफ से अमान हो और कुछ की तरफ से अमान न हो, क्योंकि अमान के अंदर तकसीम नहीं हो सकती। ये इसी तरह है जैसे विलायत इनकाह भाई के सगीर या सगीरा पर उसके बाप दादा को विलायत होती है, और अगर बाप दादा ना हो तो उसके जो भाई हैं उनको विलायत हासिल होती है, और यहां हर एक को कामिल विलायत हासिल होती है क्योंकि विलायत इनकाह में तकसीम नहीं है भाई। और उसके बाद साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि अगर किसी मुसलमान ने कुफार को अमान दिया है लेकिन उस अमान के अंदर मुसलमानों का नुकसान है तो इमाम इस अमान को तोड़ सकता है, अलबत्ता कुफार को इत्तला दे दे कि हमारी तरफ से कोई अमान नहीं है तुम्हें भाई। और साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि जिम्मी जो है वो अमान नहीं दे सकता, इसलिए क्योंकि जिम्मी खुद भी काफिर है और जिनको अमान दे रहा है वो भी काफिर हैं, तो लिहाजा दिलों में बदगुमानी आएगी कि ये उनको फायदा पहुंचाना चाहता है भाई। इसी तरह अगर कोई मुसलमान कैदी है कुफार के पास, या कोई ऐसा ताजिर है जो कुफार के पास आता जाता है, तो इस किस्म का आदमी भी कुफार को अमान नहीं दे सकता भाई। इसलिए क्योंकि कुफार के दिलों में इनका खौफ नहीं है। तो अगर ये अमान देंगे तो अमान ने महल खौफ से मुलाकात न की, लिहाजा ऐसा अमान मोतबर ही नहीं है। और फिर साहिब हिदाया ने अब्द महजूर के अमान का मसला जिक्र फरमाया। मैंने आपको बतलाया था यहां अब्द महजूर से मुराद वो है जिसको जिहाद की इजाजत नहीं दी उसके आका ने, और यहां अब्द माजून लहू का जो जिक्र आया है उससे मुराद वो अब्द माजून है जिसको उसके आका ने जिहाद की इजाजत दी है। भाई तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि अब्द महजूर अगर किसी को अमान देता है तो इमाम साहब के नजदीक इस अमान का कोई एतबार नहीं, अब्द महजूर किसी को अमान नहीं दे सकता। जबकि इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं कि अब्द महजूर भी अमान दे सकता है। इमाम मोहम्मद रहमला फरमाते हैं कि अब्द महजूर यह भी मोमिन है और नीज ये कुव्वत वाला भी है, और जब ये मोमिन है तो इसको जिहाद की इजाजत है और अमान देना यह भी जिहाद का हिस्सा है, लिहाजा इसको अमान देने की इजाजत होगी। और नीज दूसरी शर्त हमने यह जिक्र की कि अमान देने वाले को कुव्वत वाला होना चाहिए। वजह यह कि जब यह अमान देगा तो इस अमान की वजह से दुश्मन का खौफ दूर हो जाएगा। तो अब्द महजूर जो है वो मोमिन भी है और कुव्वत वाला भी है कि दुश्मन उससे खौफ खाते हैं और उसके अमान की वजह से दुश्मन का खौफ दूर हो जाता है, लिहाजा ये अमान दे सकता है। और नीस इमाम मोहम्मद रहमला ने इस अब्द महजूर को कियास किया था अब्द माजून लहू पर कि जब अब्द माजून लहू फिल किताल वो अमान दे सकता है तो ये अब्द महजूर जो है ये भी अमान दे सकता है। और नीज इमाम मोहम्मद रहमला ने अमान मुअक्कत को कियास किया था अमान मुअब्बद पर। मैंने आपको बतलाया कि अमान मुअक्कत वो है जो जिहाद के अंदर दुश्मन को अमान दिया जाए, और ये चूंकि कुछ वक्त के लिए अमान होता है इसलिए इसको अमान मुअक्कत कहते हैं। और एक अमान मुअब्बद है और वो जिम्मी को हासिल होता है, क्योंकि जिम्मी ने हमेशा दारुल इस्लाम के अंदर रहना है तो उसको हमेशा के लिए अमान हासिल है। और याद रखो बिल इत्तेफाक हमारे अइमा के नजदीक ये जो अब्द महजूर है ये किसी हरबी को अमाने मुअब्बद दे सकता है, यानी उसको जिम्मी बना सकता है। तो इमाम मोहम्मद रहमला इस अमान मुअक्कत को कियास करते हैं अमान मुअब्बद पर कि जब अब्द महजूर को अमान मुअब्बद की विलायत हासिल है वो हमेशा के लिए हरबी को अमान दे सकता है तो इसे अमान मुअक्कत की भी विलायत हासिल होगी भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने इमाम साहेब की दलील जिक्र फरमाई कि ये जो अब्द महजूर है इसको लड़ाई की इजाजत नहीं है, जब इसको लड़ाई की इजाजत नहीं तो ये अहले लश्कर नहीं है, जब ये अहले लश्कर नहीं है तो दुश्मन इसे खौफ नहीं खाता, जब दुश्मन इसे खौफ नहीं खाता तो इसका दुश्मन को अमान देना भी सही नहीं है, क्योंकि अमान तो उसको दिया जाता है जो खौफ खाने वाला है। तो यह अगर अमान देगा भी तो अमान ने महल खौफ से मुलाकात नहीं की, लिहाजा इस अमान का कोई एतबार नहीं। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने अब्द महजूर को कियास किया था अब्द माजून लहू फिल किताल पर, तो उसका भी जवाब दिया कि आप इस अब्द महजूर को अब्द माजून लहू पर कियास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि अब्द माजून लहू वो तो लश्कर का हिस्सा है, उससे तो दुश्मन खौफ खाता है, लिहाजा उसका अमान देना सही है। और नीज ये अब्द महजूर जो है यह तो लड़ाई में भी हिस्सा नहीं ले सकता आका की इजाजत के बगैर, तो लिहाजा इसको अमान देने की इजाजत भी नहीं होगी, क्योंकि अमान भी एक किस्म की लड़ाई और जिहाद है, क्योंकि जिस तरह लड़ाई की वजह से दुश्मन का शर दूर होता है इसी तरह अमान देने की वजह से भी दुश्मन का शर दूर होगा। तो अमान भी लड़ाई की तरह है और लड़ाई की तो अब्द महजूर को इजाजत नहीं है, लिहाजा इस अमान की भी उसको इजाजत नहीं होगी। और नीज अगर यह अमान देगा भी तो उसमें तो जाहिर यही है कि नुकसान होगा, क्योंकि इसे लड़ाई का कोई तजर्बा नहीं है, तो इसके अमान देने की वजह से मुसलमानों पर गनीमत का दरवाजा बंद हो जाएगा, तो इसमें आम मुसलमानों का नुकसान है। लिहाजा जब अब्द महजूर को लड़ाई की इजाजत नहीं है कि उसमें आका का नुकसान है, तो इसको अमान की भी इजाजत नहीं होगी जिसके अंदर मुसलमानों का नुकसान है। जबकि इसके मुकाबले में अब्द माजून लहू जो है उसको जब लड़ाई की इजाजत है तो उसको अमान की भी इजाजत होगी, इसलिए क्योंकि उसमें जब आका ने गुलाम को लड़ाई की इजाजत दे दी तो गोया आका अपने नुकसान पर खुद ही राजी है, तो लिहाजा उस अब्द माजून लहू को अमान देने की इजाजत होगी भाई। और नीज चूंकि वो लड़ाई सरंजाम दे चुका है लिहाजा अमान देने में उसे गलती भी कम ही होगी। और नीज इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने अमान मुअक्कत को कियास किया था अमान मुअब्बद पर, उसका भी जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि यह जो अमान मुअब्बद है यह अमान मुअक्कत से मुख्तलिफ है। अमान मुअक्कत अगर अब्द महजूर देगा तो उसके अंदर जाहिर यही है कि मुसलमानों का नुकसान होगा क्योंकि उसे लड़ाई का तजर्बा नहीं है, जबकि अमान मुअब्बद जो है वह तो फायदे वाली चीज है, इसलिए क्योंकि वह इस्लाम का खलीफा है। अमान मुअब्बद क्या है? इस्लाम का खलीफा है और नाइब है, यानी जिस तरह हर्बी मुसलमान हो जाएं तो उनके साथ लड़ाई खत्म कर दी जाती है, इसी तरह जब वो जिम्मी बन जाएं तो उनसे भी लड़ाई खत्म कर दी जाती है। तो मालूम हुआ ये अमान मुअब्बद यानी जिम्मी बनना ये इस्लाम का खलीफा है। तो ये इसी तरह हुआ जैसे कुफार को दावत देना, और कुफार को दावत देने की विलायत तो हर मुसलमान को हासिल है, हत्ता कि अब्द महजूर भी दूसरों को इस्लाम की दावत दे सकता है। तो जब अब्द महजूर इस्लाम की दावत दे सकता है तो जिम्मी बनाना भी इसी की तरह है, इसकी भी इसको इजाजत होगी। भाई आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि जिम्मी बनाना इस्लाम की दावत देने की तरह किस तरह है? भाई देखिए अभी बयान हुआ कि ये जो अमान मुअब्बद है ये इस्लाम का नाइब है, इस्लाम की वजह से जैसे लड़ाई खत्म कर दी जाती है इसी तरह अमान मुअब्बद जिसको दे दिया जाए उससे भी लड़ाई खत्म कर दी जाती है। तो मालूम हुआ अमान मुअब्बद के अंदर जिम्मी का फायदा है। इसी तरह जब किसी को इस्लाम की दावत दी जाती है तो उसमें दावत देने वाले का भी फायदा है और जिसको दावत दी जा रही है उसका भी फायदा है। तो यहां पर भी जब यह शख्स जिम्मी बनेगा तो इसके अंदर इस जिम्मी का भी फायदा है कि इसको इसके साथ लड़ाई खत्म हो जाएगी, और मुसलमानों को भी फायदा है कि इसका शर दफा हो जाएगा मुसलमानों से। तो मालूम हुआ कि ये जो अमान मुअब्बद है ये इस्लाम का नाइब है। जिस तरह इस्लाम से लड़ाई खत्म इसी तरह जिम्मी बनने से भी लड़ाई खत्म। तो ये जिम्मी बनाना किसी को इस्लाम की दावत देने की तरह हुआ, और अब्द महजूर को दावत देने की विलायत हासिल है तो उसे जिम्मी बनाने की यानी अमान मुअब्बद की भी विलायत हासिल होगी, क्योंकि इसमें दोनों का नफा है भाई। और नीज इस अमान मुअब्बद की वजह से मुसलमानों को फायदा होगा कि उनको जिजिया हासिल होगा भाई, और नीज इसलिए भी अब्द महजूर को अमान मुअब्बद की विलायत हासिल होगी क्योंकि हरबी के सवाल करने पर उसको अमान मुअब्बद देना यह मुसलमानों पर और उनके इमाम पर फर्ज है। तो अब्द महजूर जो है जब यह अमान मुअब्बद देगा तो इसकी वजह से फर्ज साकित हो गया, फर्ज अदा हो गया, और यह भी फायदा है। तो मालूम हुआ अमान मुअब्बद के अंदर हर एतबार से फायदा ही फायदा है, लिहाजा अब्द महजूर को अमान मुअब्बद की तो विलायत हासिल होगी लेकिन अमान मुअक्कत की विलायत हासिल नहीं, क्योंकि वहां पर जाहिर यही है कि उससे मुसलमानों को नुकसान होगा भाई। और उसके बाद हमने गनीमतों और उनकी तकसीम का बाब शुरू किया था। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि जब मुसलमानों का इमाम किसी शहर पर जबरदस्ती कब्जा कर ले तो इमाम को इख्तियार है, वो चाहे तो उन जमीनों को मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम कर दे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा खैबर के मौका पर फरमाया था। और इमाम को इख्तियार है कि वो चाहे तो उन जमीनों पर उन्हीं कुफार को बरकरार रखे, वो जमीनें उन्हीं के पास रहने दे और उन लोगों पर जिजिया मुकर्रर कर दे और उनकी जमीनों पर खराज मुकर्रर कर दे, जैसा कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने सवाद इराक की जमीन में फैसला फरमाया था सहाबा किराम रिजवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन के मशवरे से। मैंने आपको बतलाया कि सवाद इराक जो है यह इराक का एक बहुत बड़ा इलाका है और बे इंतहा सरसब्जो शादाब है, यहां की जमीनें बहुत उम्दा हैं। तो इस सवाद इराक का जो इलाका था इसकी जमीनें बहुत आला थी और इसको सवाद इराक इसी वजह से कहते थे, सवाद का माना है स्याही, स्याही। और आप भी जानते हैं कि जहां सब्जा और दरख्त वगैरह बहुत ज्यादा हो तो सब्जे और दरख्त के गहरे सब्ज रंग की वजह से वहां कुछ स्याही सी मालूम होती है। तो यह जमीन भी चूंकि खूब सरसब्ज और शादाब थी तो इसीलिए इसको सवाद इराक कहा जाता था भाई। तो जब मुसलमानों ने सवाद इराक के इलाके को फतह कर लिया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने किबार सहाबा को जमा किया और उनसे मशवरा किया। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि इस जमीन को मुसलमानों के लिए ही रोक दीजिए, यानी इनको मुजाहिदीन में तकसीम न कीजिए। अगर आपने इसको मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया तो बाद वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा, बल्कि इस जमीन को इन्हीं लोगों के, इन्हीं कुफार के कब्जे में रहने दीजिए और इन पर जिजिया और खराज मुकर्रर कर दीजिए। तो ये हम मुसलमानों के लिए भी फायदामंद होगा और बाद में आने वालों को भी इसका फायदा होगा। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को उनकी यह राय बड़ी पसंद आई और फिर हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अंसार के बड़े लोगों को जमा किया और उनके सामने ये बात जिक्र की। उन्होंने भी इस बात की ताइद की कि इसको मुजाहिदीन में तकसीम न किया जाए। चुनांचे हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर यही फैसला फरमाया कि इन जमीनों को उन्हीं लोगों के पास रहने दिया जाए। और मैंने बताया कि कुछ लोग इसकी बड़ी शदीद मुखालफत कर रहे थे, जैसे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो और कुछ और लोग थे, बाजों ने एक आध और सहाबी भी जिक्र फरमाए हैं। तो ये बड़ी शिद्दत के साथ मुखालफत कर रहे थे कि ये जमीनें हमने फतह की हैं, लिहाजा इसमें हमारा हक है, ये हमारे दरमियान तकसीम की जाए, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की जमीनें तकसीम फरमाई थी। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने इन जमीनों को मुजाहिदीन के दरमियान तकसीम नहीं फरमाया। और ये सवाद इराक का इलाका कितना बड़ा था और इसकी जमीनें कितनी आला थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की वफात से एक साल कबल ये खराज आना शुरू हो गया भाई। तो पहली मर्तबा जो खराज आया वो 10 करोड़ दिरहम थे भाई, अंदाजा लगाइए 10 करोड़ दिरहम। और दिरहम भी छोटे दिरहम नहीं थे, आम दिरहम तो 3 माशे 1 रत्ती और खुमुसे रत्ती का होता है, यानी तकरीबन 3.25 माशे का होता है एक दिरहम। लेकिन ये दिरहम ये 4.5 माशे के थे, यानी एक दीनार के बराबर बड़े थे भाई। तो इस किस्म के 10 करोड़ दिरहम बतौर खराज के पहली मर्तबा मौसूल हुए। और ये वो जमाना था कि जब 2-4 दिरहमों के अंदर पूरे घर का बेहतरीन खर्चा चल जाता था महीने भर के लिए भाई। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब 2-4 दिरहम के साथ पूरे घर का महीने भर का खर्चा चल जाता हो तो वहां पर 10 करोड़ दिरहम, और दिरहम भी आला किस्म वाले बड़े दिरहम हो, तो ये कितनी ज्यादा दौलत बनती है भाई। तो साहिबे हिदायत फरमाते हैं कि इमाम को इख्तियार होगा कि वो चाहे तो जमीनों को इन मुजाहिदीन में तकसीम कर दे, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में किया था, और चाहे तो इन जमीनों पर इन्हीं लोगों को बरकरार रखे और उन पर जिजिया और खराज मुकर्रर कर दे, जैसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किया था भाई। तो यह तो मसला था आकार के अंदर, यानी गैर मनकूली जायदाद जो है कि उसके अंदर मुशरिकीन और कुफार पर एहसान जायज है कि ये जमीनें उन्हीं के पास रहने दी जाएं और उन पर जिजिया और खराज मुकर्रर कर दिया जाए। लेकिन इसके अलावा जो मनकूली माल है तो उसके अंदर कुफार पर एहसान करना जायज नहीं है, वो उनके पास नहीं छोड़ा जाएगा, उनसे ले लिया जाएगा भाई। इमाम शाफई रहमहुल्ला हमसे आकार के मसले में इख्तिलाफ करते हैं, वो कहते हैं आकार भी यानी गैर मनकूली जायदाद भी कुफार के पास रहने देना और उन पर एहसान करना ये जायज नहीं है। वजह यह कि यह जो गैर मनकूली जायदाद है यह भी माले गनीमत है भाई, और इसके अंदर ए अहनाफ आपके नजदीक गनीमत वालों का हक आ चुका है और हमारे नजदीक इसके अंदर गनीमत वालों की मिल्कियत आ चुकी है, और किसी के हक को या मिल्कियत को बातिल करना सही नहीं, क्योंकि आप अगर यह जमीनें इन्हीं कुफार के हवाले कर देंगे तो इसके अंदर जो मुसलमानों का हक आ चुका है या मुसलमानों की जो मिल्कियत आ चुकी है उसको बातिल करना पड़ेगा, और किसी के हक या मिल्कियत को बातिल करना तो सही नहीं है भाई। जबकि हम दलील में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का फेल जिक्र करते हैं कि उन्होंने सवाद इराक की जमीनें उन्हीं कुफार के पास रहने दी थी भाई, और नीज इसलिए भी कि हम कहते हैं कि अगर ये जमीनें इन्हीं लोगों के पास रहने दी जाएंगी तो इसमें मुसलमानों का फायदा है, इसलिए क्योंकि ये लोग मुसलमानों के लिए काश्तकार के तौर पर काम करेंगे, मुसलमानों के लिए काश्तकार के तौर पर काम करेंगे और चूंकि ये जमीनें इन्हीं की हैं तो ये इन जमीनों के मामलात को भी खूब अच्छी तरह जानने वाले हैं, तो मुसलमानों को इन जमीनों से आमदनी हासिल होगी और नीज काश्तकारी का जो खर्चा वगैरह है वो भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि काश्तकारी के अंदर भी खर्चा होता है भाई, उसके लिए बीज हल और बैल वगैरह की जरूरत होती है और नीस काम करने के लिए बाज़ौकात और लोगों को भी उजरत पर लाना पड़ता है, लेकिन ये जब जमीनें हम इन्हीं लोगों के पास छोड़ देंगे तो इस सूरत में ये उन जमीनों पर काम करेंगे तो गोया ये मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं बगैर किसी उजरत के और मुसलमानों को इनसे सालाना खराज मिलता रहेगा भाई। तो जो मौजूदा मुसलमान हैं वो भी इनसे फायदा उठाएंगे और बाद में आने वाले मुसलमान भी इससे फायदा उठाएंगे भाई। और फिर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि इमाम को कैदियों के बारे में इख्तियार होगा, अगर वो चाहे तो इन कैदियों को कत्ल करवा दे और अगर वो चाहे तो इन कैदियों को गुलाम बना ले और अगर चाहे तो इनको जिम्मी बना दे जिनसे सालाना जिजिया वसूल किया जाएगा भाई। अलबत्ता मुशिकीन अरब या मुर्तद जो है उनका यह हुक्म नहीं है, उनको गुलाम बनाने की या उनसे जिजिया लेने की इजाजत नहीं, उनसे सिर्फ इस्लाम कबूल किया जाएगा या उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा भाई। और अगर कैदियों में से कोई मुसलमान हो गया तो उसे कत्ल तो नहीं किया जा सकता, अलबत्ता उसको गुलाम बनाया जा सकता है भाई। और फिर साहिब हिदाया ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि मुसलमान कैदियों के बदले में कुफार के कैदी आजाद करना इमाम साहब के नजदीक जायज नहीं जबकि साहिबैन के नजदीक जायज है। और मैंने यह भी बतलाया कि ये जो साहिबैन का मजहब है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जिक्र फरमाते हैं कि इमाम साहब की दो रिवायतों में से ज्यादा जाहिर रिवायत भी यही है, मालूम हुआ यह हमारे तीनों अइमा का मजहब है कि मुसलमान कैदी को छुड़ाने के लिए कुफार के कैदी को आजाद करना जायज है भाई, जायज है भाई। अलबत्ता माल लेकर कुफार के कैदी को आजाद करना जायज नहीं है भाई। हां अलबत्ता अगर मुसलमानों को माल की हाजत है जरूरत है तो फिर कुफार के कैदियों को भी माल के बदले आजाद किया जा सकता है। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि कुफार के कैदियों को एहसान करते हुए मुफ्त में छोड़ना यानी उनके बदले अपने कैदी भी रिहा ना करवाए जाए और उनसे माल भी ना लिया जाए, वैसे ही कुफार के कैदियों को छोड़ दिया जाए एहसान करते हुए, यह जायज नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह जायज है क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी ग़ज़वा बदर के बास कैदियों को वैसे ही छोड़ दिया था बगैर किसी इवज के भाई, तो लिहाजा यह जायज है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम कि तुम मुशरिकीन को कत्ल करो जहां कहीं भी तुम पाओ, और इस आयत के जरिए वो हदीस मनसूख है क्योंकि ये आयत बाद में नाजिल हुई है और इसके अंदर मुतलकन मुशरिकीन के कत्ल का हुक्म दिया गया है, मालूम है मुशरिकीन पर एहसान करना जायज नहीं है भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। व इदा अरादल इमामुल औद व माहू मवाशिन فلم يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحها وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها। भाई सूरत यह है कि इमाम जिहाद के बाद अब दारुल इस्लाम वापस आना चाहता है और माल गनीमत में और चीजों के साथ साथ बहुत सारे मवेशी भी हैं, मसलन बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, गाय बैल वगैरह हैं या बहुत सारे ऊंट हैं और इमाम इनको दारुल इस्लाम मुंतकिल करने पर कादिर नहीं है, इतने ज्यादा मवेशी हैं, तो फिर इनका क्या किया जाए? क्या इनको कुफार के लिए वहीं पर छोड़ दिया जाए? तो आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे कि नहीं, इन मवेशियों को इमाम जिबा कर दे और फिर इनको जला दे, जिबा कर दे और जला दे, जिबा कर दे ताकि ये जिंदा कुफार के पास बाकी न रहें और फिर इनको जला दे ताकि जिबा के बाद भी इनका गोश्त उनके काम न आए भाई, ताकि उनकी कुव्वत पूरी तरह टूट जाए खत्म हो जाए। तो कहते हैं वह ईदा अरादल इमामुल औदा और जब इमाम का इरादा हो वापस लौटने का वह माहू मवाशिन इस हाल में कि उसके पास बहुत से मवेशी हैं फलम यकदिर अला नकलिहा इला दारिल इस्लामी, तो इमाम कादिर नहीं है इस बात पर कि उन मवेशियों को मुंतकिल कर ले दारुल इस्लाम। ज़बहहा, तो इमाम उन मवेशियों को ज़िबा कर दे। वहर्रकहा, और उनको जला दे। वला याकिरुहा वला यतरुकुहा। आकारा याकिरु, भाई अरब का तरीका था कि वो जब ऊंट को ज़िबा करने लगते थे तो पहले उसके घुटनों पर तलवार मारते ताकि ऊंट गिर जाए और आसानी से काबू में आ जाए। तो इसको आकर कहते हैं, आकारा याकिरु आकरन। तो कहते हैं वला याकिरुहा वला यतरुकुहा, और इमाम उन मवेशियों का अकर न करे, यानी उनको इस तरह जख्मी करके छोड़कर न आए भाई, इसलिए क्योंकि ये तो जुलम है भाई और ये तो मुसला है भाई, तो लिहाजा इनका अकर न करे बल्कि जिबा करके जला दे। तो कहते हैं वला याकिरुहा, और इन हैवानात को वो जख्मी न करे। वला यतरुकुहा, और इनको वहां न छोड़े। वकाल शाफिय रहिमहुल्लाह तआला यतरुकुहा, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन हैवानात को इमाम वहीं छोड़ देगा, इनको वहीं छोड़कर आ जाए। लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु नहा अन ज़बहि शाति इल्ला लिमअकलतिन, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खाने के अलावा भेड़ बकरियों को ज़िबा करने से मना फरमाया है। खाने के अलावा भेड़ बकरियों को ज़िबा करने से हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है, लिहाजा इनको वैसे ज़िबा नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु नहा अन ज़बहि शाति इल्ला लिमअकलतिन। मअकलतुन, मअकलतुन खाने को कहते हैं, वो खाना जिसको खाने के लिए तैयार किया गया है उसको मअकला कहते हैं भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु नहा अन ज़बहि शाति इल्ला लिमअकलतिन, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम ने खाने के अलावा भेड़ बकरियों को ज़बह करने से मना फरमाया है। और याद रखना यहां पर आया अन ज़बहि शाति, एक है ज़बहुन ज़ाल के फतहा के साथ और एक है ज़िबहुन ज़ाल के कसरा के साथ। तो जाल के फतहा के साथ यानी ज़बहुन, ये मस्दर है, इसका माना है ज़िबा करना और हदीस में भी यही लफ्ज है भाई। और एक है ज़िबहुन ज़ाल के कसरा के साथ, याद रखो ज़िबहुन उस ज़िबा किए जाने वाले जानवर को कहते हैं, यानी उस ज़बीहे को क्या कहते हैं, ज़िबहुन। तो यहां आपने ज़ाल के फतहा के साथ पढ़ना है। आगे देखिए वलना, और हमारी दलील यह है कि नज़बहल हैवानी यजूज़ लिग़रज़िन सहीहिन, के हैवान को ज़िबा करना किसी सही मकसद के लिए जायज है। वला ग़रज़ असहु मिन कसरी शौकतिल अअदाई, और कोई गरज ज्यादा सही नहीं हो सकती दुश्मन की कुव्वत तोड़ने से, दुश्मन की ताकत तोड़ना वो ये सबसे सही गरज है, लिहाजा इनको ज़िबा किया जा सकता है। सुम्मा युहर्रकु बिन नारी, फिर इनको आग से जला दिया जाएगा। लियन कतिया मन फातुहु अनिल कुफारी, ताकि इनका नफा कुफार से खत्म हो जाए, कुफार इनसे किसी किस्म का नफा न उठा सकें। वसारक तखरीबिल बुनियानी, और ये इसी तरह हो गया जैसे इमारतें गिराना। तखरीब का माना है गिराना और बर्बाद करना, और बुनियान इमारत को कहते हैं। जैसे जिहाद के अंदर आप पीछे पढ़ चुके हैं कि दुश्मन पर मंजनीकों से पत्थर भी बरसाए जा सकते हैं, उन पर दरिया का पानी भी छोड़ा जा सकता है, उनके दरख्तों और फसलों को भी जलाया जा सकता है और काटा जा सकता है, इसी तरह उनके मकानात और दरख्तों वगैरह को जलाया भी जा सकता है ताकि उनकी कुव्वत टूट जाए। तो यहां पर भी ये हैवानात को ज़िबा करना और जला देना ये इसी तरह है जैसे उनकी इमारतों को गिराना, और जैसे उनकी इमारतों को गिराना जायज है इसी तरह उनके हैवानात को ज़िबा करके जलाना भी जायज है। तो कहते हैं वसारा का तखरीबिल बुनियानी, तो ये इमारतों को गिराने और बर्बाद करने की तरह हो गया। बेखिलाफ तहरीक कबल ज़बही, बखिलाफ ज़िबा से पहले जलाना, ज़िबा से पहले नहीं इनको जलाया जा सकता भाई, इसलिए क्योंकि किसी भी चीज को आग का अजाब देने से मना किया गया है, आग का अजाब देने से शरीयत ने मना किया है। तो कहते हैं बेखिलाफ तहरीकी कबल ज़बही, बखिलाफ ज़िबा करने से पहले जलाने के। लिअन्नहु मनहियुन अन्हु, इसलिए क्योंकि इसे मना किया गया है। वह बिखिलाफ इल आकरी और बखिलाफ जख्मी करने के। मैंने बताया आकर का क्या माना है, वो जो तलवार चलाकर ऊंट की टांग काट दी जाती थी, वो नहीं किया जाएगा। कहते हैं वह बिखिलाफ इल आकरी और बखिलाफ टांग काटने के, ले अन्ना हो मुसलतुन, क्योंकि वो मुसला है और मुसला भी हराम है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसे मना फरमाया है। वह तुहर्रकुल असलहतु अयजन, और असलहे को भी जला दिया जाएगा, असलहे को भी जला दिया जाएगा। आप कहेंगे भाई असलहा तो लोहे का होता है, उसको कैसे जलाया जाएगा? नहीं भाई, कदीम जमाने में सारा असलहा लोहे का नहीं होता था, बल्कि तीर कमान, देखो ये तीर कमान लकड़ी के होते थे, इसी तरह नेजे होते थे वो भी लकड़ी के होते थे। तो इस तरह की जो चीजें हैं असलहे के अंदर जिनको आग से जलाया जा सकता है, उनको जला दिया जाएगा अगर इमाम उसको मुंतकिल नहीं कर सकता। और अगर वो लोहे की चीजें हैं जिन्हें जलाया नहीं जा सकता, मसलन तलवारें वगैरह हैं या और चीजें, और इमाम उनको मुंतकिल नहीं कर सकता, तो कहते हैं फिर इनको जमीन में किसी ऐसी जगह दफन कर दिया जाएगा कि कुफार को उसका पता ना हो भाई, ताकि ये उनके काम ना आए भाई। तो कहते हैं वतुहर्रकुल असलहतु अयज़न, असलहा जमा है सिलाह की, सिलाह असलहे को कहते हैं। तो कहते हैं वह तो हर रकुल असलहतु अयजन, और असलहे को भी जला दिया जाएगा। वह माला यख्तरिकु मिन्हा, और वो असलहा जो इनमें से जल नहीं सकता, युदफनु फी मौज़िइन, उसको दफन कर दिया जाएगा ऐसे मकाम पर, ला यत्तलिउ अलैहिल कुफारु, कि कुफार उस पर मुत्तले ना हो, कुफार को उसका इलम ना हो, इबतालन लिल मनफाति अलैहिम, उन पर नफे को बातिल करने के लिए, ताकि कुफार इस असलहे से फायदा न उठा सकें। आगे देखिए, वला यक्सिमु गनीमतन फी दारिल हर्ब हत्ता यखरुजहा इला दारिल इस्लाम। यहां से दूसरी बहस शुरू हो रही है इस बाब की। ये बाब हमने शुरू किया था बाबुल गनाइमी व किस्मतिहा। शुरू के अंदर साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि गनीमत दो किस्म की है, कुछ आकार है और कुछ मनकूली चीजें हैं, और उनका क्या हुक्म है वो भी बयान कर दिया। और फिर साहिब हिदाया ने यह बयान फरमाया कि कैदियों के अंदर इमाम को इख्तियार है, उनको कत्ल भी कर सकता है, कैदी भी बना सकता है और उनको जिम्मी भी बना सकता है। और फिर यह भी बतलाया कि मुसलमान कैदियों को कुफार कैदियों के बदले आजाद करवाना जायज है, और यह भी बतलाया कि एहसान करते हुए उन कुफार के कैदियों को मुफ्त में वैसे ही छोड़ना जायज नहीं है भाई। बात समझ में आ गई। अब इस बाब की दूसरी बहस शुरू हो रही है भाई। इसके अंदर यह बयान फरमाएंगे साहिब हिदाया कि गनीमत को कहां तकसीम किया जाएगा। भाई याद रखो, इंदल अहनाफ गनीमत को दारुल इस्लाम मुंतकिल करने के बाद तकसीम किया जाएगा। गनीमत को दारुल इस्लाम मुंतकिल करने के बाद मुजाहिदीन में तकसीम किया जाएगा। तो अब वो बयान करने लगे, कहते हैं वला यक्सिमु गनीमतन फी दारिल हर्बी, और इमाम जो है गनीमत को दारुल हर्ब में तकसीम नहीं करेगा, हत्ता यखरुजहा इला दारिल इस्लामी, यहां तक कि उसको निकाल लाए दारुल इस्लाम की तरफ। जब इमाम माले गनीमत को दारुल इस्लाम ले आए तो फिर यहां तकसीम करेगा। और यह याद रखना, यह हुक्म उस वक्त है जब मुसलमानों ने उस इलाके और शहर वगैरह पर कब्जा नहीं किया, मुसलमान वापस चले जाएंगे तो अब वापस जाने के बाद माले गनीमत तकसीम किया जाएगा। लेकिन अगर मुसलमानों ने एक इलाके पर कब्जा कर लिया है, शहर वगैरह को फतह कर लिया है और इस इलाके को ममलिकत इस्लामिया में दाखिल कर लिया है, तो अब यह सारा दारुल इस्लाम बन चुका है, लिहाजा यहीं पर अब गनीमत को तकसीम किया जा सकता है भाई। तो कहते हैं इमाम तकसीम नहीं कर सकता माले गनीमत को, हत्ता युखरिजहा इला दारिल इस्लामी, यहां तक कि उसको दारुल इस्लाम निकाल लाए। वकाल शाफियो रहमहुल्लाह ताला ला बास बिज़ालिका, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इसमें कोई हरज नहीं है, इमाम वहीं पर दारुल हर्ब में ही माले गनीमत तकसीम कर सकता है इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक। व असलुहू, और इस इख्तिलाफ की असल जो है वो ये है कि अन्नल मिल्का लिल गानिमीना। भाई ये बात पहले भी बयान हो चुकी है कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह के नजदीक जब मुजाहिदीन के हाथ माले गनीमत आ जाए तो वहीं दारुल हर्ब में ही मुजाहिदीन उसके मालिक बन गए हैं, जबकि इंदल अहनाफ मुजाहिदीन का माले गनीमत के अंदर सिर्फ हक आया है, जब वो इसको दारुल इस्लाम मुंतकिल करेंगे फिर मालिक बनेंगे। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह असलूहू, और इस इख्तिलाफ की जो असल है वो ये है कि अन्नल मिल्का लिल गानिमीना ला यसबुतु कब्ल अल इहराज बिदारिल इस्लामी इंदना, कि गनीमत वालों के लिए मिल्कियत वो साबित नहीं होती कब्ल अल इहराज बिदारिल इस्लामी इंदना, दारुल इस्लाम में महफूज करने से पहले हमारे नजदीक। हमारे नजदीक मुजाहिदीन की मिल्कियत कब साबित होगी माले गनीमत में? जब इस माल को दारुल इस्लाम में महफूज कर लिया जाएगा। फिर तर्जमा देख लीजिए, वह असलूहू, और इस इख्तिलाफ की असल यह है कि अन्नल मिल्का लिल गानिमीना ला यसबुतू, कि गनीमत हासिल करने वालों के लिए मिल्कियत साबित नहीं होती कबल अल इहराज बिदारिल इस्लाम इंदना, दारुल इस्लाम के अंदर महफूज करने से पहले इंदना हमारे नजदीक, व इंदहू यसबुतू, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक मिल्कियत साबित हो जाती है, यानी दारुल इस्लाम मुंतकिल करने से पहले ही मुजाहिदीन के लिए उस माले गनीमत में मिल्कियत साबित हो जाती है। वयबतनी अला हादल असली इद्दतुम मिनल मसाइली ज़करनाहा फी किफायतिल मुंतही। साहिब हिदाया फरमा रहे हैं वयबतनी अला हादल असली, और इसी असल पर बुनियाद है इद्दतुम मिनल मसाइली कई मसाइल की, ज़करनाहा फी किफायतिल मुंतही, जिनको हमने किफायतुल मुंतही में जिक्र किया है। ये जो हमारा और शवाफिया का इख्तिलाफ है, हमारे नजदीक मुजाहिदीन जब माले गनीमत को दारुल इस्लाम लाएंगे तब मालिक बनेंगे, और उनके नजदीक दारुल हर्ब में ही मुजाहिदीन उस माल के मालिक बन गए हैं। इस इख्तिलाफ पर कई मसाइल मुतफर्रिह होते हैं, कहते हैं जिनको हमने किफायतुल मुंतही में जिक्र किया है। भाई जैसे मुहशी हजरात जिक्र फरमाते हैं कि मसलन गनीमत वालों में से कोई एक जो है उसने किसी कैदी बांदी के साथ सोहबत कर ली और इस कैदी बांदी से आगे औलाद पैदा हुई और फिर इस शख्स ने उस बच्चे के नसब का दावा कर दिया, तो हमारे नजदीक नसब साबित नहीं होगा क्योंकि मिल्कियत ही साबित नहीं है, बगैर मिल्कियत के बांदी के औलाद के अंदर नसब साबित नहीं हो सकता। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक इस बांदी के अंदर तमाम गनीमत वालों का हिस्सा आ चुका है, लिहाजा ये सोहबत करने वाले का भी हिस्सा है, तो जब इसकी मिल्कियत बांदी में मौजूद है तो नसब साबित हो जाएगा और ये बच्चा आजाद शुमार होगा, जबकि हमारे नजदीक नसब साबित नहीं है, लिहाजा ये बच्चा जो है ये भी माले गनीमत के अंदर ही शुमार होगा, और जैसे इस बांदी के अंदर तमाम गनीमत वालों का हक है इसी तरह इस बच्चे के अंदर भी तमाम गनीमत वालों का हक होगा। नीस इसी इख्तिलाफ पर मबनी है कि इमाम या मुसलमानों में से कोई शख्स अगर माले गनीमत में से कोई चीज बेचता है तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक जायज है क्योंकि उनकी मिल्कियत इसके अंदर आ चुकी है, और हमारे नजदीक जायज नहीं क्योंकि मिल्कियत नहीं आई। कोई शख्स अपनी ममलूका चीज तो बेच सकता है, किसी दूसरे की चीज नहीं बेच सकता, तो हमारे नजदीक ये बेचना जायज नहीं होगा। नीज इसी तरह अगर गाजियों में से किसी का इंतकाल दारुल हर्ब में ही हो जाए तो उसका हिस्सा उसके वारिसों को नहीं मिलेगा हमारे नजदीक, क्योंकि अभी तक वो अपने हिस्से का मालिक ही नहीं बना था, सिर्फ उसका हक आया था माल में लेकिन वो मालिक नहीं बना, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक वो मालिक बन चुका है, लिहाजा उसके हिस्से में वरासत जारी होगी। भाई और नीस कहते हैं इसी तरह अगर कुछ और मुजाहिदीन मदद को आ गए दारुल इस्लाम से तो हमारे नजदीक वो भी इस माले गनीमत में शरीक हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि माले गनीमत अभी किसी का भी ममलूका नहीं है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक अगर और मुजाहिदीन आकर मिल गए तो उनका इस माले गनीमत में कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि पहले से जो मुजाहिदीन मौजूद हैं वो इसके मालिक बन चुके हैं। भाई और कहते हैं नीस इसी तरह अगर इन मुजाहिदीन में से किसी ने इस माले गनीमत में से कोई चीज तलफ कर दी तो हमारे नजदीक जमान नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई मुसलमान भी इनका अभी मालिक ही नहीं बना, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक ये मुसलमान मुजाहिदीन इसके मालिक बन चुके हैं, लिहाजा इस शख्स पर जमान आएगा भाई। तो इन मसाइल की तरफ इशारा फरमा रहे हैं साहिब हिदाया, कहते हैं वयबतनी अला हादल असली, और इसी असल पर इसी जाब्ते पर बुनियाद है इद्दतु मिनल मसाइली, कई मसाइल की जकर नाहा फी किफायतिल मुंतही, जिनको हमने किफायतुल मुंतही में जिक्र किया है। आप जानते हैं भाई साहिब हिदाया ने बतलाया था कि मैंने इस मतन की जो पहली शरह लिखी उसका नाम किफायतुल मुंतही है और वो 80 जिल्दों पर मुश्तमिल है, लेकिन चूंकि वो बहुत तवील हो गई थी लिहाजा मैंने इनका खुलासा लिखा 4 जिल्दों के अंदर और इसका नाम मैंने हिदाया रखा भाई। तो ये वो किफायतुल मुंतही किताब है साहिब हिदाया की। लहू इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील भाई, भाई इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुजाहिदीन दारुल हर्ब के अंदर ही माले गनीमत के मालिक बन गए हैं। अब उसकी दलील जिक्र कर रहे हैं। लहू इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्ना सब अबल मिल की इस्तीलाऊ, इस्तीला का माना है किसी चीज पर कब्जा करना, किसी चीज पर गलबा पा लेना। कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अन्ना सब अबल मिल की इस्तीलाऊ कि मिल्कियत का सबब वो गलबा है और इन मुजाहिदीन ने इन अमवाल पर गलबा पा लिया है, इन पर कब्जा कर लिया है, तो ये मालिक बन गए। कहते हैं ये इसी तरह है जैसे शिकार है, शिकार को जो शख्स पकड़ लेता है वो उसका मालिक बन जाता है, तो इसी तरह इस माल पर भी इन मुजाहिदीन ने कब्जा किया तो ये इसके मालिक बन गए हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्ना सब अबल मिल्किल इस्तीलाऊ कि मिल्कियत का सबब जो है वो गलबा और कब्जा है। इदा वरद अला माल मुबाहिन, जब वो कब्जा वारिद हो जाए माल मुबाह पर, मुबाह माल पर जब कब्जा आ जाए गलबा आ जाए तो इंसान उसका मालिक बन जाता है। जैसे शिकार सबके लिए मुबाह था, उस पर शिकारी का कब्जा आ गया तो उसका मालिक बन जाता है। तो कहते हैं इदा वरदा अला माल मुबाहिन, जब कब्जा आ जाए माल मुबाह पर कमाफिस सुयूदी, जैसे कि शिकार के अंदर है, सुयूद जमा है सैद की, शिकार को कहते हैं कमाफिस सुयूदी, जैसे कि शिकार के अंदर है। वला माना लिल इस्तीला सिवा इस बात यदि, और गलबे का और कोई माना नहीं है सिवाय कब्जे के साबित करने के। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं कि इस्तीला की वजह से मिल्कियत साबित हो जाती है और इस्तीला जो है कब्जे ही का नाम है और किसी चीज का नाम नहीं। तो जब मुजाहिदीन ने माल पर कब्जा कर लिया तो उनका इस्तीला आ गया और जब इस्तीला आ गया तो अब उस माल के मालिक बन गए। तो कहते हैं वला माना लिल इस्तीलाई, इस्तीला का यहां माना कर लें गलबे के, गलबे के। वला माना लिल इस्तीलाई, और गलबे का और कोई माना नहीं है सिवा इस बात यदि, सिवाय कब्जे के साबित करने के। वक़त तहक्कका, और तहकीक ये इस्तीला तो पाया गया है, ये गलबा तो पाया गया है लिहाजा ये मालिक बन गए। व लना, और हमारी दलील जो है अन्नहु अलैहि सलातु व सलामु नहा अन बैइल गनीमति फी दारिल हर्ब, हमारी दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल हर्ब के अंदर गनीमत बेचने से मना फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल हर्ब के अंदर गनीमत बेचने से मना फरमाया है। आप भी हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब दलील है। बहस ये चल रही है कि हमारे नजदीक इमाम दारुल हर्ब में माल गनीमत तकसीम नहीं कर सकता, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो माल गनीमत तकसीम कर सकता है क्योंकि मुजाहिदीन की मिल्कियत उसके अंदर आ चुकी है भाई। और दलील के तौर पर साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दारुल हर्ब में गनीमत को बेचने से मना फरमाया है। तो भाई इस दलील को समझ लें भाई, भाई याद रखो जब भी मुश्तरका चीज को तकसीम किया जाता है तो वहां मुबादला भी होता है और इफराज भी होता है। अफराजा युफरीजु, इफराज का माना है अपना हिस्सा अलग कर देना, और मुबादले का माना होता है कि अपना कुछ हिस्सा दूसरे को देकर उसका हिस्सा ले लेना। मसलन देखो, जैद और अमर दोनों ने मिलकर दो बकरियां खरीदी, दोनों ने पैसे मिलाए और दो बकरियां खरीद ली। अब याद रखो इनमें से हर बकरी दोनों के दरमियान मुश्तरका है, उन्होंने तकसीम नहीं किया अभी कि यह बकरी तुम्हारी है और यह बकरी मेरी है, तो यह दोनों बकरियां दोनों के अंदर मुश्तरका हैं। पहली बकरी है उसके अंदर जैद का भी हिस्सा और अमर का भी हिस्सा, दूसरी बकरी है उसके अंदर भी जैद का भी हिस्सा और अमर का भी हिस्सा, फिर ये दोनों उसको आपस में तकसीम करते हैं। तो यहां जब तकसीम आएगी तो याद रखो वहां इफराज भी आएगा और मुबादला भी आएगा। मसलन एक बकरी जैद ने ले ली कि ये मेरी हो गई और एक बकरी अमर ने ले ली कि ये बकरी मेरी हो गई, तो यहां इन्होंने देखो माले मुश्तरका को तकसीम किया। अब देखो जैद के हिस्से में जो बकरी आई, क्या ये सारी बकरी जैद की थी या इसके अंदर अमर का भी हिस्सा था? जाहिर सी बात है इस बकरी में अमर का भी हिस्सा था। इसी तरह अमर के हिस्से में जो बकरी आई है उसके अंदर अमर का भी हिस्सा था और जैद का भी हिस्सा था। तो जैद ने जब एक बकरी ले ली तो इस बकरी के अंदर कुछ हिस्सा था ही जैद का, तो गोया उस हिस्से को जैद ने अलग कर लिया कि यह हिस्सा मेरा है। और नीज कुछ हिस्सा अमर का भी था इस बकरी में, तो जैद ने दूसरी बकरी के अंदर जो अपना हिस्सा था वो अमर को दे दिया और इस बकरी में जो अमर का हिस्सा था वो उसके बदले में ले लिया। तवज्जो है, इस बकरी के अंदर कुछ हिस्सा था ही जैद का, जैद ने उसको अलग कर लिया, इसको कहते हैं इफराज, अपना हिस्सा क्या कर लिया, अलग कर लिया। लेकिन इसी बकरी के अंदर अमर का भी तो हिस्सा था, तो जैद ने वो अमर का हिस्सा भी ले लिया और बदले में दूसरी बकरी के अंदर जो जैद का हिस्सा था वो उसने अमर को दे दिया जी। तो इसको कहते हैं मुबादला, कि कुछ हिस्से में क्या कर लिया आपस में, मुबादला कर लिया, और कुछ हिस्से में इफराज हो गया कि अपना हिस्सा अलहदा कर लिया। तवज्जो है, तो मालूम हुआ जब भी मुश्तरका चीज दो आदमियों के दरमियान तकसीम होगी तो वहां इफराज भी होगा और मुबादला भी। इफराज इसलिए क्योंकि कुछ हिस्सा तो था ही इसी आदमी का, गोया उसको इसने अलग कर लिया, और मुबादला इसलिए कि इसी चीज में दूसरे आदमी का भी तो हिस्सा था, तो इस आदमी ने वो हिस्सा लेकर दूसरी चीज में जो अपना हिस्सा था वो दूसरे को दे दिया, तो गोया आपस में दोनों ने मुबादला कर लिया। तो मुबादलातुल माल बिल माल पाया गया, मुबादलातुल माल बिल माल पाया गया। और आप जानते हैं कि मुबादलातुल माल बिल माल को बैअ कहते हैं। बैअ के अंदर भी दो आदमी आपस में माल का तबादला करते हैं, एक शख्स पैसे देता है तो दूसरा शख्स वो मबीआ उसके हवाले कर देता है। तो लिहाजा जहां भी तकसीम की जाए वहां पर इफराज भी होता है और मुबादला भी, और मुबादला भी बैअ है। गोया तकसीम के अंदर बैअ पाई जा रही है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो दारुल हर्ब में बैअ करने से मना किया है, तो लिहाजा दारुल हर्ब में तकसीम भी मना होगा क्योंकि तकसीम के जिमन में तो बैअ पाई जा रही है। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं वलाना, हमारी दलील यह है कि अन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु नहा अन बैइल गनीमति फी दारिल हर्ब, कि हुजूर अलैहि सलाम ने गनीमत को बेचने से मना फरमाया है दारुल हर्ब में। वल खिलाफ साबितुन फीही, और इस बैअ के अंदर भी इख्तिलाफ साबित है, यानी इसमें भी हमारा और इमाम शाफई रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है। हमारे नजदीक दारुल हर्ब में बैअ जायज नहीं और उनके नजदीक ये मुजाहिदीन इस माल गनीमत के मालिक बन चुके हैं, लिहाजा उनके लिए बैअ जायज है भाई। तो कहते हैं वल खिलाफ साबितुन फीही, और इख्तिलाफ इस बैअ के अंदर भी साबित है। वल किस्मत बैउ मानन, और तकसीम जो है यह भी माना के एतबार से बैअ है। फतदखुलु तहतहु, लिहाजा यह तकसीम भी बैअ के तहत दाखिल है, और बैअ से तो हुजूर ने मना किया है लिहाजा तकसीम भी ममनू होगी भाई। वली अन्नल इस्तिला इस्बातुल यदिल हाफिजति वन नाकिला, यहां से दूसरी दलील जिक्र कर रहे हैं और इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील का जवाब दे रहे हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि मुजाहिदीन ने इस माल गनीमत पर इस्तीला कर लिया है, यानी इस पर गलबा हासिल कर लिया है, तो अब वो इसके मालिक बन गए हैं। हम कहते हैं नहीं, इस्तीला तब होगा जब हिफाजत वाला कब्जा भी आ जाए और जब और तसरुफात वाला कब्जा भी आ जाए, और यह जो माल गनीमत है जो अभी दारुल हर्ब ही के अंदर है इसके अंदर मुजाहिदीन का हिफाजत वाला कब्जा तो आ गया है लेकिन दीगर तसरुफात वाला कब्जा अभी भी नहीं आया। भाई याद रखो, कब्जा दो किस्म पर है, एक है हिफाजत वाला कब्जा और एक है तसर्रुफात वाला कब्जा। मसलन एक चीज आप एक आदमी के पास अमानत रखवाते हैं, तो ये चीज अब उस आदमी के कब्जे में है, लेकिन उसका ये कब्जा हिफाजत वाला है, वो इस चीज के अंदर और तसर्रुफात नहीं कर सकता, वो इसको बेच नहीं सकता, वो किसी को हिबा नहीं कर सकता। लेकिन जो मालिक है उसका अपनी ममलूका चीज पर जो कब्जा होता है वो हिफाजत वाला कब्जा भी होता है और तसर्रुफात वाला कब्जा भी होता है। मालिक चाहे तो अपनी उस चीज को बेच दे या किसी को हिबा कर दे, जिस तरह का वो तसर्रुफ उसमें करना चाहे तो कर सकता है। तो मालूम हुआ कब्जे दो किस्म के हैं, एक हिफाजत वाला कब्जा और एक तसर्रुफात वाला कब्जा। और इस्तीला यानी किसी चीज पर गलबा, तवज्जो है हमारी दलील चल रही है, इस्तीला यानी किसी चीज पर गलबा जो है उस वक्त होगा जब हिफाजत वाला कब्जा भी हो और तसर्रुफात वाला कब्जा भी हो। लेकिन यह जो मुजाहिदीन ने माल गनीमत पर कब्जा किया है, यहां हिफाजत वाला कब्जा तो है लेकिन तसर्रुफात वाला कब्जा अभी भी नहीं आया, क्योंकि हो सकता है दुश्मन फिर पलटकर हमला करे और यह सारा माल हमसे छीन ले, ये सारा माल हमसे छीन ले। लिहाजा मालूम हुआ अभी तसर्रुफात वाला कब्जा नहीं हुआ, हो सकता है दुश्मन हमसे ये चीज वापस ले ले। तो कहते हैं वली अन्नल इस्तीला इस्बातुल यदिल हाफिजति वन्नाकिलति, और इसलिए क्योंकि इस्तीला यानी गलबा जो है इस्बातुल यदिल हाफिजति वो हिफाजत वाले कब्जे को साबित करना है, वन्नाकिलति और नकल करने वाले कब्जे को साबित करना है। एक है यद हाफिजा हिफाजत वाला कब्जा और एक है यदे नाकिला नकल करने वाला कब्जा, यानी जिसमें हर तरह का तसरुफ इंसान को मिल जाता है, वो चीज को अपनी मिल्कियत से दूसरे शख्स की मिल्कियत की तरफ मुंतकिल कर सकता है बेअ या हिबा वगैरह के जरिए। भाई तो कहते हैं वली अन्नल इस्तीला इस्बातुल यदिल हाफिजति व नाकिलति, और इसलिए क्योंकि गलबा जो है वो यद हाफिजा और यद नाकिला को साबित करने का नाम है। वसानी मुनअदिमुन, और सानी यहां मादूम है यानी तसर्रुफ वाला कब्जा यहां नहीं है। लिकुदरतिहिम अलल इस्तिनकाजी, इसलिए क्योंकि वो कुफार कादिर हैं इसको छुड़ाने पर, कि हो सकता है वो फिर हमला करें और ये चीजें हमसे छुड़ा लें। भाई वह वजूदुहु जाहिरुन, और इस छुड़ाने का पाया जाना जाहिर है क्योंकि दारुल हरब के अंदर हैं, तो जाहिर ये है कि अभी भी वो इस माल को हमसे छुड़ा सकते हैं। भाई लिहाजा मालूम हुआ अभी तक इस्तीला साबित ही नहीं हुआ, इस्तीला तो तब होगा जब यद हाफिजा के साथ साथ यद नाकिला भी पाया जाए, यानी हिफाजत के कब्जे के साथ साथ दीगर तसरुफात वाला कब्जा भी पाया जाए। तो मालूम हो अभी तक इस्तीला कामिल नहीं, जब इस्तीला कामिल नहीं तो इमाम इसको तकसीम भी नहीं कर सकता। आगे देखिए सुम्मा कीला, फिर कहा गया है मौज़िउल खिलाफी तरत्तुबुल अहकामी अलल किस्मती। भाई यहां से बयान फरमा रहे हैं कि ये जो हमारा और इमाम शाफई रहमहुल्ला का इख्तिलाफ है, क्या ये जवाज और अदम जवाज का इख्तिलाफ है या कराहत और अदम कराहत का इख्तिलाफ है। अगर ये जवाज और अदम जवाज का इख्तिलाफ हुआ तो मालूम हुआ हमारे नजदीक इमाम का तकसीम करना जायज ही नहीं, और उनके नजदीक तकसीम करना जायज है। और जब तकसीम करना जायज है तो फिर इस तकसीम पर उसके अहकाम भी मुरतब होंगे। भाई याद रखो जब एक चीज जायज ही नहीं है तो उस पर उसके अहकाम भी मुरतब नहीं होंगे। भाई जैसे खिंजीर की बेअ जायज ही नहीं है मुसलमान के लिए, लिहाजा अगर मुसलमान जिम्मी के साथ खिंजीर की बेअ करता है तो यह बेअ जायज ही नहीं। जब बेअ जायज ही नहीं है तो मुश्तरी मबीए का मालिक भी नहीं बनेगा। तवज्जो है, क्योंकि मालिक बनना यह बेअ का हुक्म है, और हुक्म तब आएगा जब एक चीज शरअन जायज हो। तो बाज फुकहा फरमाते हैं कि यहां पर हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का जो इख्तिलाफ है वो जवाज और अदम जवाज का है। हमारे नजदीक इमाम के लिए यह तकसीम जायज ही नहीं। जब तकसीम जायज ही नहीं है तो मुजाहिदीन इसके मालिक भी नहीं बनेंगे। जब वो मालिक नहीं बनेंगे तो उनके लिए इन चीजों से नफा उठाना भी जायज नहीं होगा। वो इन चीजों को बेच नहीं सकते। अगर कोई बांदी वगैरह है तो उसके साथ सोहबत नहीं कर सकते भाई। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक ये चीजें चूंकि जायज हैं लिहाजा मुजाहिदीन के लिए भी इन चीजों से नफा उठाना जायज होगा। जबकि बाज फुकहा फरमाते हैं कि हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का जो इख्तिलाफ है वो कराहत के अंदर है। हमारे नजदीक इस माल गनीमत को दारुल हर्ब के अंदर तकसीम करना मकरूह है जबकि उनके नजदीक मकरूह नहीं है। तो जब हमारे नजदीक ये मकरूह है, मालूम है जायज है अलबत्ता मकरूह है। जब जायज है तो फिर इस सूरत में अहकाम मुरतब होंगे, यानी मुजाहिदीन के लिए इन चीजों से नफा हासिल करना जायज होगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं सुम्मा कीला, फिर कहा गया है मौज़िउल खिलाफी, इख्तिलाफ का महल जो है तरतुबुल अहकाम अलल किस्मती, वो तकसीम पर अहकाम का मुरतब होना है। इदा कसमल इमामु ला अन इज्तिहादिन, जब इमाम उस माल को तकसीम कर दे बगैर इज्तिहाद के, बगैर इज्तिहाद के। भाई देखिए दारुल हर्ब में माल गनीमत को इमाम तकसीम कर सकता है या नहीं, हमारा और इमाम शाफई रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है। मालूम हुआ इस मसले में इज्तिहाद की गुंजाइश है। बाज फुकहा एक तरफ गए हैं और बाज फुकहा दूसरी तरफ, लिहाजा इमाम ने दारुल हर्ब के अंदर मुजाहिदीन के अंदर माल तकसीम किया। तो यहां दो सूरतें होंगी, या तो इमाम ने इज्तिहाद किया होगा या इज्तिहाद नहीं किया। इमाम ने इज्तिहाद किया माना यह है कि इमाम ने गौर व फिक्र किया उसके अंदर, इमाम ने उस मामले में गौर व फिक्र किया, शरई दलाइल में गौर किया और फिर उसकी राय बन गई कि माल तकसीम कर देता हूं, चुनांचे उसने माल तकसीम कर दिया। तो फिर इस सूरत में याद रखो जब उसने इज्तिहाद के बाद माल तकसीम किया है तो मुजाहिदीन उस माल के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि इस मसले में इज्तिहाद की गुंजाइश है और इमाम शाफी रहमतुल्लाह भी इसी तरफ गए हैं भाई। लेकिन अगर इमाम ने बगैर इज्तिहाद के वैसे ही माल तकसीम कर दिया, माल गनीमत हाथ आया और इमाम ने बगैर इज्तिहाद के वैसे ही तकसीम कर दिया, तो फिर इस सूरत में याद रखो हमारे नजदीक ये तकसीम सही नहीं, ये जायज नहीं। जब जायज नहीं तो इस पर मिल्कियत वाले अहकाम भी मुरतब नहीं होंगे, मुजाहिदीन के लिए इन चीजों से नफा उठाना जायज नहीं। अगर किसी के हिस्से में बांदी आई है तो उसके लिए उस बांदी से सोहबत जायज नहीं है, और अगर कोई और माल उसके हिस्से में आया है तो उस माल को बेचना जायज नहीं है, क्योंकि बांदी से सोहबत तभी जायज होती है जब उसके अंदर मिल्कियत हो, और किसी माल को बेचना तभी जायज होता है जब इंसान उसका मालिक होता है। तवज्जो है? तो मालूम हुआ हमारे नजदीक अगर इमाम ने बगैर इज्तिहाद के बेचा है तो मिल्कियत वाले अहकाम ही नहीं आए, लिहाजा उनसे नफा भी नहीं उठाया जा सकता। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक मिल्कियत वाले अहकाम आ चुके हैं, लिहाजा वो मुजाहिदीन उन चीजों से नफा उठा सकते हैं। तो ये माना है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं सुम मकील, फिर कहा गया है मौज़िउल खिलाफी तरतुबुल अहकाम अलल किस्मती, कि इख्तिलाफ का जो महल है वो तकसीम पर अहकाम शरईया का मुरतब होना है। इज़ा कसमल इमामुला अन इज्तिहादिन, जब इमाम तकसीम कर दे बगैर इज्तिहाद के, लिअन्न हुक्मल मिल्की ला यस्बुतु बिदूनिही, इसलिए क्योंकि मिल्कियत का हुक्म साबित नहीं हो सकता बिदूनिही, बगैर मिल्कियत के, मिल्कियत के बगैर मिल्कियत वाला हुक्म नहीं साबित हो सकता। एक आदमी एक चीज का मालिक बनेगा तो उसके लिए उसे नफा उठाना भी जायज होगा। अगर एक शख्स एक चीज का मालिक ही नहीं बना तो उसके लिए नफा उठाना भी जायज नहीं, क्योंकि नफा उठाना यह मिल्कियत का हुक्म है। तो बगैर मिल्कियत के मिल्कियत का हुक्म साबित नहीं हो सकता, यह माना है। लिअन्न हुक्मल मिल्की ला यस्बुतु बिदूनिही, इसलिए क्योंकि मिल्कियत का हुक्म बगैर मिल्कियत के साबित नहीं हो सकता। वकीला, और कहा गया है अल कराहतु, के इख्तिलाफ का महल कराहत है, वही कराहतु तंजीहिन इंदा मुहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और ये कराहत तंजीही है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। आप जानते हैं कि कराहत दो किस्म पर है, एक कराहत तहरीमी है और एक कराहत तंजीही है। कराहत तंजीही वो है जो हलाल के करीब है, नापसंदीदा है लेकिन हलाल है, और एक कराहत तहरीमी है जो हराम के ज्यादा करीब है। भाई तो कहते हैं वही कराहत तंजीहिन इंदा मोहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और ये कराहत तंजीही है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। फइन्नहु काला, इसलिए क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह सीयर कबीर में फरमाते हैं, अला कौली अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुल्लाह तआला ला तजूजुल किस्मत फी दारिल हर्बी, के शेखैन रहिमहुल्लाह के कौल पर दारुल हर्ब में तकसीम जायज नहीं है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह सीरे कबीर में फरमाते हैं कि शेखैन रहमहुमल्लाह के कौल पर दारुल हर्ब में तकसीम जायज नहीं है। वइंद मोहम्मदिन रहमहुमल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, अल अफजलु अन यक्सिम फी दारिल इस्लामी, अफजल यह है कि इमाम दारुल इस्लाम के अंदर गनीमत तकसीम करे। अफजल यह है, मालूम हुआ दारुल हर्ब में भी तकसीम कर सकता है लेकिन अफजल यह है कि दारुल इस्लाम में गनीमत को तकसीम करे। तो कहते हैं वाइंदा मोहम्मदिन रहिमहुल्लाह, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, अल अफजलु अन यक्सिम फी दारिल इस्लामी, अफजल यह है कि इमाम दारुल इस्लाम में गनीमत तकसीम करे। वजहुल कराहती, और कराहत की जो वजह है वो ये है कि अन दलील अल बुतलानी राजिहुन, के बातिल होने की दलील राजिह है। बास फुकहा फरमाते हैं ये जो हमारा और इमाम शाफई रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ है, ये जवाज और अदम जवाज वाला इख्तिलाफ नहीं है बल्कि कराहत वाला इख्तिलाफ है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह के नजदीक दारुल हर्ब के अंदर इमाम माल गनीमत तकसीम करे ये मकरूह नहीं है, और हमारे नजदीक मकरूह है। और उसकी वजह क्या है अब वो जिक्र करने लगे हैं। कहते हैं देखो यहां दोनों तरफ की दलीलें मौजूद हैं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने दलील दी कि यह माल मुबाह है और इस पर मुसलमानों ने गलबा हासिल कर लिया है तो ये मालिक बन गए हैं, लिहाजा यहां इसको तकसीम किया जा सकता है। ये मालिक बन चुके हैं, ये माले मुश्तरका है तो इसको वो दारुल हर्ब में ही तकसीम कर सकते हैं। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील से इस तकसीम के मुबाह होने का पता चला कि यह तकसीम जायज है। और हमारी दलील जो हमने जिक्र कर दी कि हदीस के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने दारुल हर्ब के अंदर माल गनीमत को बेचने से मना फरमाया है, और इसलिए क्योंकि अभी तक गलबा पूरा नहीं हुआ, हो सकता है कुफार दोबारा हमला कर लें और हमसे छीन लें, तो हमारी दलील से इस तकसीम की हुरमत का पता चला। तो दोनों तरफ की दलीलें आ गई, एक दलील से तकसीम की इबाहत का पता चल रहा है और एक दलील से तकसीम के हराम होने का पता चल रहा है। और आप जानते हैं कि जब एक चीज के अंदर दोनों किस्म की दलीलें आ जाएं, एक दलील मुबीह है और एक दलील मुहर्रिम है, हराम करने वाली है, तो मुहर्रिम दलील को तरजीह होती है। तो मुहर्रिम दलील को तरजीह होती है। वजह यह कि इसके अंदर एहतियात ज्यादा है। मसलन एक चीज है और उसके बारे में दोनों किस्म की दलीलें मौजूद हैं, तो अगर आप मुहर्रिम दलील को तरजीह दे देते हैं और इस चीज को हराम करार दे देते हैं, लेकिन हकीकत तो अल्लाह ही जानते हैं कि हकीकत में यह चीज हलाल है या हराम है। हमारे पास दलीलें तो दोनों मौजूद हैं लेकिन यह चीज हकीकत के एतबार से हलाल है या हराम यह तो अल्लाह ही जानते हैं। तो मसलन हमने हुरमत वाली दलील को तरजीह दे दी और इसको हराम करार दे दिया, लेकिन हो सकता है हकीकत के एतबार से यह चीज हलाल हो, तो ज्यादा से ज्यादा एक हलाल चीज के इस्तेमाल से हम रुक गए, कोई और नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर मुबीह दलील पर अमल कर लिया जाए और इस चीज को इस्तेमाल कर लिया जाए या खा लिया जाए और हो सकता है वो चीज हकीकत के अंदर हराम हो, तो देखो इसके अंदर एक हराम चीज का इस्तेमाल या हराम चीज का खाना लाजिम आएगा, तो इसके अंदर देखो नुकसान है। तो लिहाजा उलमा फरमाते हैं जब मुबीह और मुहर्रिम दलीलें जमा हो जाएं तो मुहर्रिम को तरजीह होती है क्योंकि उसमें एहतियात ज्यादा है। तो यहां पर भी दारुल हर्ब के अंदर माल गनीमत की तकसीम का मसला चल रहा है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील मुबीह है और हमारी दलील मुहर्रिम है, तो लिहाजा मुहर्रिम को तरजीह होगी। तो यह माना है वह वजहुल कराहती, और कराहत की वजह जो है वो ये है कि अन्न दलील अल बुतलानी राजिहुन, के इसके बातिल होने की दलील राजे है, इस तकसीम के बातिल होने की दलील राजे है क्योंकि वह मुहर्रिम है। इल्ला अन्नहु तकाअद अन सलबिल जवाजी, तकाउद का माना है किसी चीज को छोड़ देना, यहां इसका माना हम कर लेंगे रुक जाना। इल्ला अन्नहु तकाअद अन सलबिल जवाजी, मगर यह दलील रुक गई, यह दलील रुक गई अन सलबिल जवाजी, जवाज की नफी से, यानी हमारी दलील उससे इस तकसीम के बातिल होने का पता चल रहा है, लेकिन इस तकसीम को बातिल करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि हमारे नजदीक भी जरूरत और हाजत की सूरत में इमाम दारुल हर्ब में ही माले गनीमत तकसीम कर सकता है। अगर मुजाहिदीन को हाजत और जरूरत है तो फिर दारुल हर्ब में भी इमाम इस माल को तकसीम कर सकता है। तो लिहाजा एक दलील मुहर्रिम थी, एक दलील मुबीह थी, मुहर्रिम को तरजीह हो गई, लेकिन फिर भी मुहर्रिम की वजह से उस चीज का हराम होना साबित नहीं हुआ क्योंकि बहरहाल मुहल्लिल दलील भी तो मौजूद है, तो हुरमत तो साबित नहीं हो सकी, अलबत्ता कम अज कम फिर कराहत तो जरूर साबित हो जाएगी। ये माना है कि फिर तर्जमा देख लीजिए कि वह वजहुल कराहती, और मकरूह होने की वजह जो है वो ये है कि अन्न दलील अल बुतलानी राजिहुन, कि इस तकसीम के बातिल होने की जो दलील है वो राजिह है। इल्ला अन्नहु तकाअद अन सलबिल जवाजी, मगर ये दलील रुक गई जवाज की नफी से, इसकी वजह से जवाज की ही नफी हो जाए, तकसीम जायज ही ना हो, ऐसा नहीं है क्योंकि इसके मुकाबले में मुबीह दलील मौजूद है। मगर यह कि यह दलील जो है जवाज की नफी से रुक गई, इसकी वजह से अदम जवाज साबित ना हुआ, फला यतकाअदु अन इरासिल कराहती, तो यह रुकेगी नहीं कराहत पैदा करने से। हमारी इस दलील की वजह से हुरमत तो साबित नहीं हुई क्योंकि इसके मुकाबले में इबाहत वाली दलील मौजूद है, लेकिन बहरहाल कराहत तो कम अज कम जरूर साबित हो जाएगी। तो औरसा यूरिसु ईरास का माना है पैदा करना और वजूद देना, तो कहते हैं फला यतकाअदु अन इरासिल कराहती, तो यह दलील जो है कराहत को वजूद देने से नहीं रुकेगी, यानी बहरहाल कराहत तो पैदा हो जाएगी। भाई आगे देखिए भाई, काल वर्रिद उल मुकातिलु फिल अस्करी सवा उन, यहां से इस बाब की तीसरी बहस शुरू हो रही है। इसके अंदर साहिब हिदायत यह बतलाएंगे कि कौन माल गनीमत का मुस्तहिक है और कौन माल गनीमत का मुस्तहिक नहीं। साहिब हिदायत बतलाएंगे जो लड़ने के लिए आया है वो भी माल गनीमत का मुस्तहिक है, जो मुजाहिदीन की खिदमत के लिए आया है वो भी माल गनीमत का मुस्तहिक है क्योंकि वो भी मुजाहिदीन की मदद कर रहा है, अलबत्ता जो तिजारत के लिए आया है वो माल गनीमत का मुस्तहिक नहीं है। भाई देखिए बड़ा लश्कर है, हजारहा लोग उसके अंदर शामिल हैं, तो कुछ लोग तिजारत के लिए साथ हो जाते हैं कि इन मुजाहिदीन को चीजों की जरूरत होगी तो ये मुझसे चीजें खरीदेंगे, तो ये जो तिजारत की नीयत से आया है और जो लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता माल गनीमत के अंदर इसका हिस्सा नहीं होगा। भाई तो कहते हैं काला साहिब खुदूरी फरमाते हैं वर रिद उल मुकातिलु फिल अस्करी सवा उन, रिद उन भाई, रिद उन कहते हैं मददगार और मुआविन को, कहते हैं वर रिद उल मुकातिलु फिल अस्करी सवा उन, और लश्कर के अंदर जो लड़ने वाला है और जो मददगार है सवा उन, ये दोनों बराबर हैं, यानी दोनों को माले गनीमत मिलेगा, लिस्तिवा इहिम फिस सब अभी, इस वजह से कि दोनों सबब के अंदर बराबर हैं। भाई याद रखो हमारे नजदीक माले गनीमत का मुस्तहिक होने का सबब जो है वो इस्लामी सरहद को अबूर करके दारुल हर्ब जाना है जिहाद के इरादे से, तो जो शख्स भी जिहाद के इरादे से ममलिकत इस्लामिया की हद से गुजरकर दारुल हर्ब में दाखिल होता है तो वो शख्स माले गनीमत का मुस्तहिक होगा, वो शख्स माल गनीमत का मुस्तहिक होगा। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि माल गनीमत का मुस्तहिक होने का सबब जो है वो सरहद को अबूर करना नहीं है बल्कि वो लड़ाई के अंदर हाजिर होना है, तो जो लोग लड़ाई में हाजिर हैं वो माले गनीमत के मुस्तहिक होंगे। भाई ये माना नहीं कि जो लड़ रहे हैं सिर्फ वो ही, बल्कि जो भी लड़ाई के वक्त हाजिर हैं, यानी चाहे आगे लड़ रहे हैं या पीछे लश्कर के अंदर मदद के लिए मौजूद हैं या खिदमत के लिए मौजूद हैं, ये सारे क्या हैं, लड़ाई में हाजिर हैं भाई, लिहाजा ये सब गनीमत के मुस्तहिक होंगे भाई। तो हमारे नजदीक लश्कर के अंदर जो लड़ने वाला है और मददगार हैं सवा उन, ये सब बराबर हैं, लिस्तिवा इहिम फिस सबबी, इस वजह से कि ये गनीमत के मुस्तहिक होने का जो सबब है उसके अंदर बराबर हैं। वह हुवल मुजावजतु, और वो तजावुज करना है, यानी दारुल इस्लाम की सरहद से तजावुज करके दारुल हर्ब चले जाना, और नीयत भी जिहाद की होनी चाहिए, तिजारत वगैरह की नीयत नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं वह अल मुजावजतु, और गनीमत का मुस्तहिक होने का जो सबब है वो दारुल इस्लाम की हद से तजावुज करना है, यानी जिहाद की नीयत से। औ शुहूद अल वकअती, वकअतुन भाई, वका के कई मानी आते हैं, इसका एक माना है लड़ाई, वका का एक माना है लड़ाई, और यहां वही माना मुराद है। औ शुहूदुल वकाती, या गनीमत का मुस्तहिक होने का सबब जो है वो लड़ाई में हाजिर होना है। अलामा उरिफा, उस वजह से जिसको जाना गया है, यानी जो हमारे और शवाफे के दरमियान इख्तिलाफ है, हमारे नजदीक माले गनीमत का मुस्तहिक होने का सबब वो दारुल इस्लाम की सरहद को अबूर करके दारुल हर्ब जाना है जिहाद की नीयत से, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक उसका सबब लड़ाई के अंदर हाजिर होना है। फिर तर्जमा देख लीजिए, वह हुवल मुजावजतु औ शुहूदुल वकअति अला मा उरिफा, और वो सबब जो है वो दारुल इस्लाम की सरहद से तजावुज करना है या लड़ाई के अंदर हाजिर होना है। अला मा उरिफा, बवजह उसके जिसको जाना गया है। वह कदालिका इदा लम युकातिल लिमा रजिन औ लिगैरिही लिमा दकरना, भाई एक शख्स है वो लड़ाई के लिए गया, जिहाद के लिए गया, लेकिन वहां वो बीमार हो गया, लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सका, हमारे नजदीक फिर भी वो माले गनीमत का मुस्तहिक है, इसलिए क्योंकि उसने सरहद अबूर की थी जिहाद की नीयत से, लिहाजा वो माले गनीमत का मुस्तहिक है। या इसी तरह एक आदमी है वो जिहाद के लिए गया था, लेकिन इमाम ने किसी काम से उसको भेजा और उसके वापस आने तक लड़ाई खत्म हो गई, तो ये भी चूंकि लड़ाई के इरादे से सरहद से तजावुज करके गया था, लिहाजा ये भी माले गनीमत का मुस्तहिक होगा। बात समझ में आ गई, ये माना है। वकदालिका इदा लम युकातिल लिमरज़िन, और इसी तरह है मसला, यानी ये गनीमत का मुस्तहिक होगा इदा लम युकातिल लिमरज़िन, जब एक शख्स ने लड़ाई नहीं की बीमारी की वजह से, औ लिगैरिही या किसी और वजह से, लिमा ज़करना उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि इसके अंदर सबब इस्तेहकाक मौजूद है, इसने सरहद अबूर की है जिहाद की नीयत से। व इदा लहिकहुमुल मदद फी दारिल हर्बी क़ब्ल अन युख़रिजुल गनीमत इला दारिल इस्लामी शारकूहुम फीहा, भाई याद रखो अगर मुजाहिदीन अभी दारुल हर्ब में ही हैं और मजीद मुजाहिदीन इनकी मदद के लिए पहुंच गए, तो ये जो मजीद फौजी कुमक आई है इसको अरबी जुबान में मदद कहते हैं। ये जो मजीद फौजी मदद और फौजी कुमक पहुंची है इसको अरबी में मदद कहते हैं। तो मदद का माना अरबी में भी मदद के हैं और निज इसी तरह फौजी कुमक को भी मदद कहते हैं, और यहां इससे फौजी कुमक ही मुराद है। तो हमारे नजदीक मुजाहिदीन अभी दारुल हर्ब में हैं, तो वो माले गनीमत के मालिक नहीं बने, लिहाजा अगर और मुजाहिदीन इनकी मदद के लिए पहुंचते हैं तो वो भी माले गनीमत के अंदर हिस्सेदार होंगे, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक लड़ाई जब खत्म हो जाए तो ये मुजाहिदीन इस माल के मालिक बन गए, अब मजीद मुजाहिदीन पहुंचेंगे तो उनका इस माल में कोई हक नहीं होगा। तो ये माना है। वह इदा लाहिकहुमुल मददु फी दारिल हर्बी, और जब इन मुसलमानों को और फौजी कुमक पहुंची दारुल हर्ब में, क़ब्ल अन युख़रिजुल गनीमत इला दारिल इस्लामी, गनीमत को दारुल इस्लाम की तरफ निकालने से पहले, शारकूहुम फीहा, तो ये मदद के लिए पहुंचने वाले जो हैं वो भी मुजाहिदीन के साथ उस माले गनीमत में शरीक होंगे। खिलाफन लिशाफी रहमहुल्लाह बादन क़िज़ा अल-क़िताली, बखिलाफ इमाम शाफी रहमहुल्लाह के लड़ाई के गुजर जाने के बाद, वो फरमाते हैं लड़ाई के गुजर जाने के बाद मुजाहिदीन इस माल के मालिक बन गए हैं, लिहाजा जो मजीद मुजाहिदीन पहुंचेंगे उनका इस माल में कोई हिस्सा नहीं होगा। वह हुआ बिना उन अलामा महदना मिनल असली, वह हुआ बिना उन, और इस इख्तिलाफ की बुनियाद है अलामा महदना उस चीज पर जिसकी हमने तमहीद बांधी थी, यानी जिसको हमने पहले जिक्र किया था, मिनल असली यानी के वो असल। वही पीछे साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि हमारा और शवाफिया का इख्तिलाफ है, और इस इख्तिलाफ की असल यह है कि उनके नजदीक दारुल हर्ब में ही मुजाहिदीन उस माल के मालिक बन गए हैं और हमारे नजदीक मालिक नहीं बने, तो इस इख्तिलाफ की बुनियाद भी उसी जाब्ते पर है, उसी जाब्ते पर है। यह जो हमने जिक्र किया कि बाद में अगर इनकी मदद के लिए कोई और मुजाहिदीन आए तो हमारे नजदीक ये नई कुमक जो पहुंची है ये भी माले गनीमत के अंदर हिस्सेदार होंगे और उनके नजदीक हिस्सेदार नहीं होंगे। तो कहते हैं वह हुआ बिना उन अलामा महदना मिनल असली, याद रखो ये मिनल असल बयान है मा महदना का, वो जिसकी हमने तमहीद बांधी थी, मिनल असली यानी के वो असल भाई। तो लिहाजा यहां इसको तर्जमे में भी इस असल के लफ्ज को मुकदम कर दें, तो यूं तर्जमा कीजिए वह हुआ बिना उन अलामा महदना मिनल असली, और ये जो इख्तिलाफ है इसकी बुनियाद उस असल पर है जिसकी हमने तमहीद बांधी थी। वह इन नमा यनकत हकुल मुशारकत इंदना बिल एहराजी, भाई याद रखो हमारे नजदीक जो मजीद फौजी कुमक पहुंची है वो भी माले गनीमत के अंदर शरीक होंगे। हां उनका हक मुशारकत तब खत्म होगा जब हम इस माल को दारुल इस्लाम मुंतकिल कर लेंगे, या जरूरत और हाजत की वजह से इमाम ने वहीं पर माले गनीमत को तकसीम कर दिया। जब मुजाहिदीन को हाजत थी इमाम ने वहीं पर माले गनीमत उनमें तकसीम कर दिया, तो जरूरत और हाजत की सूरत में भी वो सब मालिक बन गए। तो अब वो जो मजीद फौजी कुमक पहुंची है उनका इस माल में कोई हिस्सा नहीं होगा। या वहीं पर इमाम ने उस माले गनीमत को बेच दिया, उस माले गनीमत को बेच दिया, तो इस सूरत के अंदर भी अब जो नई फौजी कुमक पहुंची है उसका माले गनीमत के अंदर कोई हिस्सा नहीं है भाई। तो कहते हैं वह इन नमायन कतियो हकुल मुशारकत इंदा नाबिल एहराजी, और ये जो नई फौजी कुमक पहुंची है इनका हक मुशारकत इन चीजों की वजह से ही खत्म होगा, और वो कौन सी चीजें वो आगे जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं वह इन नमायन कतियो हकुल मुशारकत इंदा ना, और इनका हक मुशारकत खत्म हो जाएगा हमारे नजदीक बिल एहराजी, एहराज के जरिए कि हम इस माले गनीमत को महफूज कर लें यानी दारुल इस्लाम ले जाएं, और बिकिस्मतिल इमाम फी दारिल हर्बी, या इमाम जो है दारुल हर्ब में ही वो माले गनीमत तकसीम कर दें मुजाहिदीन की हाजत की वजह से, और बेहिल मगानिम फीहा, या ये कि वो इमाम जो है उन गनीमतों को वहीं दारुल हर्ब में बेच दे। तो इस सूरत के अंदर भी वही मुजाहिदीन इसके मालिक बन जाएंगे और जो नई फौजी कुमक पहुंची है उनका इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। तो कहते हैं लिअन्न बिकुल वाहिद मिन्हा, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक के जरिए यतिमुल मिल्कु, मिल्कियत ताम हो जाती है कि दारुल इस्लाम में महफूज कर लें, या इमाम जरूरत की वजह से तकसीम कर दे, या इमाम उन गनीमतों को दारुल हर्ब में ही बेच दे, तो इनकी वजह से मिल्कियत ताम हो जाती है। फयन कतिहु हक शिरकतिल मददी, तो उस फौजी कुमक की शिरकत का हक मुनकते हो जाता है, अब उनका इस माले गनीमत में कोई हक नहीं रहता भाई। आगे देखिए काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वला हक्कल अहले सूकिल अस्करी फिल गनीमत इल्ला अन युकातिलू, वला हक, और कोई हक नहीं है लि अहले सूकिल अस्करी लश्कर के बाजार वालों का, लश्कर के बाजार वालों का यानी जो तिजारत की नीयत से आए हैं, वला हक, और कोई हक नहीं है लि अहले सूकिल अस्करी लश्कर के बाजार वालों का फिल गनीमती गनीमत में इल्ला अन युकातिलू, मगर यह कि वो लड़ाई करें। अगर वो लड़ाई की नीयत से आए हैं लेकिन साथ साथ ये तिजारत भी कर रहे हैं, फिर इनका भी हिस्सा होगा। इल्ला अन युकातिलू, मगर ये कि वो लड़ाई करें। वकाल शाफिई रहिमहुल्लाह तआला फी अहद कौलैही, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह अपने दो कौलों में से एक कौल के अंदर फरमाते हैं, युसहमु लहुम, कि इनका भी हिस्सा निकाला जाएगा। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, इस वजह से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अलगनीमतु लिमन शहीद अलवकअता, कि गनीमत उस शख्स के लिए है जो लड़ाई में हाजिर हो। जो शख्स लड़ाई में हाजिर हो, गनीमत उसके लिए है। तो ये ताजिर जो हैं, अगरचे तिजारत के लिए आए हैं लेकिन बहरहाल लड़ाई के मौके पर हाजिर तो हैं, लश्कर में मौजूद तो हैं भाई। तो कहते हैं क्योंकि हुजूर अलैह सलाम ने फरमाया है, अल गनीमतु लिमन शहीद अल वकाता, कि गनीमत उस शख्स के लिए है जो लड़ाई में हाजिर है। वली अन्नहु वुजिदल जिहाद उम्मानन, और नीज इसलिए क्योंकि इनकी तरफ से भी माना के इतिबार से जिहाद पाया गया है। बितकसीर इस सवादी, मुसलमानों की तादाद को बढ़ाते हुए। सवाद कहते हैं बड़ी तादाद को, बड़ी तादाद, कसरत भाई किसी चीज की। और तकसीर सवाद यानी मुसलमानों की जो बड़ी तादाद है उसको ये लोग और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इनकी वजह से मुसलमानों की तादाद और ज्यादा मालूम हो रही है। तो कहते हैं वली अन्नहु वुजिदल जिहाद उम्मानन, और इसलिए क्योंकि इन लोगों की तरफ से भी माना के एतबार से जिहाद पाया गया है। बितकसीर इस सवादी, मुसलमानों की तादाद को ज्यादा करते हुए। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील थी भाई कि उनके एक कौल के मुताबिक जो तिजारत के लिए गए हैं उनका भी माले गनीमत में हिस्सा होगा। वलना, अब हमारी दलील आ गई। वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु लम यूजदिल मुजावजतु अला कस्दिल किताल। मैंने आपको बतलाया था कि हमारे नजदीक माल गनीमत के मुस्तहिक होने का सबब वो इस्लामी मुल्क की सरहद को अबूर करके दारुल हर्ब आना है जिहाद की नीयत से, और ये सबब इन लोगों के अंदर नहीं पाया जा रहा। ये लोग तो सिर्फ तिजारत के लिए आए हैं। मैंने बताया अगर कोई शख्स आया तो लड़ाई की नीयत से ही है लेकिन साथ साथ वो तिजारत भी कर रहा है, उसको हिस्सा मिलेगा। ये उस शख्स की बात हो रही है जो सिर्फ तिजारत की नीयत से आया है। तो जब ये सिर्फ तिजारत की नीयत से आया है तो इसके अंदर गनीमत का मुस्तहिक होने का सबब नहीं पाया गया, यानी इसने सरहद को जिहाद की नीयत से अबूर नहीं किया भाई। तो ये जाहिरी तौर पर गनीमत का मुस्तहिक नहीं। तो ये माना है। वलना, हमारी दलील ये है कि अन्नहु लम यूजदिल मुजावजतु अला कस्दिल किताली, के लड़ाई के इरादे के साथ मुजावजत नहीं पाई गई, लड़ाई के इरादे के साथ सरहद को अबूर करना नहीं पाया गया। फन आदम सबबु जाहिरु, लिहाजा गनीमत का जाहिरी सबब मादूम हुआ, इनके हक में गनीमत का मुस्तहिक होने का जाहिरी सबब नहीं। हां, अब सबब हकीकी को देखेंगे भाई। याद रखो, गनीमत का मुस्तहिक होना एक इसका सबब जाहिरी है, एक इसका सबब हकीकी है। सबब जाहिरी यह है कि ममलिकत इस्लामिया की सरहद अबूर करे जिहाद की नीयत से, और सबब हकीकी यह है कि लड़ाई के अंदर हिस्सा ले, लड़ाई करे। तो लिहाजा ये जो तिजारत के लिए आए हैं इनके हक में सबब जाहिरी तो नहीं पाया गया, तो अब सबब हकीकी को देखा जाएगा कि इन्होंने हकीकतन लड़ाई में हिस्सा लिया या नहीं। अगर इन्होंने हकीकतन लड़ाई में हिस्सा लिया है तो फिर इनको हिस्सा मिलेगा, वरना इनको हिस्सा नहीं मिलेगा गनीमत में से। तो कहते हैं फन अदम सबबु जाहिरु, तो सबब जाहिरी इनके हक में मादूम हुआ। फयुअतबरु सबबुल हकीकी, तो अब सबब हकीकी का एतबार किया जाएगा। वहुवल किताल, और वो लड़ाई है। फयुफीदुल इस्तेहकाक अला हसबी हालिही फारिसन औ राजिलन इंदल किताल। भाई याद रखो, मुजाहिदीन जो जिहाद के लिए गए हैं, जो पैदल गया है उसको सिर्फ एक हिस्सा मिलेगा माले गनीमत में से, और जो घोड़ा लेकर गया है तो उसको दो हिस्से मिलेंगे भाई माले गनीमत में से। तवज्जो है, एक हिस्सा उस मुजाहिद का होगा और एक उसके घोड़े का हिस्सा है। तो माले गनीमत को इस तरह तकसीम किया जाएगा कि जो पैदल आया है उसको एक हिस्सा मिलेगा और जो सवार होकर आया है उसको इस पैदल के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिलेगा, यानी दो हिस्से मिलेंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन बात वही है कि जब इसने ममलिकत इस्लामिया की सरहद अबूर की उस वक्त देखा जाएगा कि उस वक्त ये पैदल था या सवार था। अगर ये पैदल था तो इसको एक हिस्सा मिलेगा, अगर ये सवार था तो अब इसको दो हिस्से मिलेंगे। अगर एक मुजाहिद ने यहां आकर घोड़ा खरीदा है और फिर अब वो उस पर जिहाद कर रहा है तो इसको एक ही हिस्सा मिलेगा, इसको एक ही हिस्सा मिलेगा, क्योंकि सरहद अबूर करते हुए ये पैदल था भाई। तो बात चल रही थी, ये जो तिजारत के लिए लोग आए थे लश्कर के साथ, इनके हक में गनीमत का सबब जाहिरी तो नहीं है, तो फिर हकीकी सबब को देखा जाएगा कि इन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया या नहीं। अगर लड़ाई में हिस्सा लिया है फिर इनको गनीमत में से हिस्सा मिलेगा, और फिर यह भी देखा जाएगा कि लड़ाई के अंदर इन्होंने पैदल हिस्सा लिया लड़ाई के अंदर या अपने घोड़े पर सवार होकर हिस्सा लिया। अगर इन्होंने पैदल हिस्सा लिया है तो इनको एक हिस्सा मिलेगा, और अगर इन्होंने घोड़े पर सवार होकर लड़ाई की है तो अब इनको दो हिस्से मिलेंगे। तो कहते हैं फयुअतबरु सबबुल हकीकी युवहुल कितालु, तो लिहाजा अब इस ताजिर के सिलसिले में सबब हकीकी का एतबार किया जाएगा और वो लड़ाई है। फयुफीदुल इस्तिहकाक अला हसबी हाली ही, तो लिहाजा ये इसके मुस्तहिक होने का फायदा देगा, यानी अगर इसने लड़ाई की है ये इसके मुस्तहिक होने का फायदा देगा। अला हसबी हाली ही, उसके हाल के मुताबिक, फारिसन और राजीलन, सवार हो या पैदल, उसके मुताबिक ये मुस्तहिक होगा भाई। अगर सवार है तो दो हिस्से मिलेंगे और अगर पैदल है तो एक हिस्सा। तो ये माना है फयुफीदुल इस्तिहकाक अला हसबि हालिहि फारिसन और राजीलन इंदल किताली, तो ये उसकी हालत के मुताबिक मुस्तहिक होने का फायदा देगा बेतबार इसके कि वह सवार है या पैदल है। इंदल किताली, लड़ाई के वक्त। वमा रवाहु मौकूफुन अला उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, और वो हदीस जिसको इमाम शाफिई रहमहुल्ला ने रिवायत किया वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर मौकूफ है। ये जो हदीस इन्होंने जिक्र की, अल गनीमतु लिमन शहीद अल वकाता, कि गनीमत उस शख्स के लिए है जो लड़ाई के अंदर हाजिर हो, तो हम कहते हैं ये हुजूर अलैहिस्सलाम का कौल नहीं है बल्कि ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है। और याद रखो इंदल अहनाफ सहाबी का कौल भी हुज्जत और दलील है जी। सहाबी का कौल भी हुज्जत और दलील है। तो इस पर अहनाफ पर एतराज होता है कि आप अगर यह भी कह दें कि यह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है फिर भी यह सहाबी का कौल है, यह खलीफा राशिद का कौल है, लिहाजा यह हुज्जत है, तो फिर आप इसके लिए इमाम शाफी रहमहुल्लाह को कैसे जवाब दे रहे हैं कि यह हुजूर का कौल नहीं है, यह सहाबी का कौल है। चाहे हुजूर का कौल हो चाहे सहाबी का कौल हो, दोनों हुज्जत हैं। इश्काल समझ में आया? तो उसका जवाब देते हैं उलमा कि भाई यहां हम इमाम शाफी रहमहुल्लाह को जवाब दे रहे हैं और इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक सहाबी का कौल हुज्जत नहीं है, तो उनके मजहब के मुताबिक हम उन्हें जवाब दे रहे हैं कि ये हुजूर का कौल ही नहीं है, ये तो सहाबी का कौल है और सहाबी का कौल तो आपके नजदीक हुज्जत नहीं है, लिहाजा आप इसको दलील के तौर पर पेश नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। ये माना है वमा रवाहु मौकूफुन अला उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, और वो हदीस जिसको इमाम शाफी रहमला ने रिवायत फरमाया वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर मौकूफ है। औ तावीलुहु, या इस हदीस की तावील ये है कि अं यशहदहा अला कस्दिल किताली, कि वो लड़ाई में लड़ाई के इरादे से हाजिर हो। ये जो हदीस में आया अल गनीमतु लिमन शहीद अल वकाता, गनीमत उसके लिए है जो लड़ाई में हाजिर हो, मुराद ये है जो लड़ाई में लड़ाई के इरादे से हाजिर हो उसके लिए गनीमत है, हर एक यहां मुराद नहीं है। तो औ तावीलुहु, या इस हदीस की तावील यह है कि अं यशहदहा अला कस्दिल किताली, कि वो इस लड़ाई में लड़ाई के इरादे से हाजिर हो। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।